सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 13 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सभी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अभी लगने वाली क्लासेस में दाखिला लिया है। इन मित्रों के नाम हैं अनुराग कुमार पाल, आप हरदोई उत्तर प्रदेश से हैं, और नीलू मिश्रा, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो अनुराग और नीलू, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि मैं अभी पिछले 2-3 दिनों से लगातार अपने उन स्टूडेंट्स से स्पेशली बात कर रहा हूं जो क्लासेस में आने वाले हैं, आज भी मैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि भले ही यह बात मैं एक्सक्लूसिवली उनको संबोधित करके कह रहा हूं, लेकिन यह संबोधन आप सबके लिए है क्योंकि बात सभी पर लागू होती है। मैं अभी उनको इसके लिए विशेष रूप से चूंकि तैयार करना चाह रहा हूं जिससे कि वो इन 15 दिनों का बहुत ही भरपूर फायदा उठा सकें, तो स्वाभाविक है कि वो मेरे विशेष लक्ष्य है। लेकिन चूंकि लर्निंग प्रोसेस में आप सभी हैं तो ये मान करके चलिए कि यह सभी के लिए है। मित्रों, कल मैंने स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में आप सबसे कुछ अर्ज किया था कि प्लीज अब आप सब अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना। इसलिए मैंने कहा था कि ताकि जिस उद्देश्य से आप आ रहे हैं उस उद्देश्य में किसी भी तरह का कोई डाइवर्शन ना होने पाए, कोई भटकाव ना आए और साथ ही साथ कोई व्यवधान भी ना आए। देखिए, जो प्राकृतिक व्यवधान होते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन हम अपने लिए तो अपने आप को बिल्कुल फिट रखें, अपने लिए ही हम रख रहे हैं ताकि हमारे अपने स्तर पर कोई व्यवधान हम खड़ी ना करें। मित्रों, आज उसी से संबंधित मैं अब दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि किसी भी चीज को करने के लिए या लर्निंग के लिए स्पेशली ये बहुत जरूरी है। जरूरी यह है मित्रों कि हम सब एक समय में किसी एक चीज को मुख्य रूप से कर रहे होते हैं, हालांकि उस समय दूसरी बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अब व्यावहारिक उदाहरण ही देता हूं कि आप सब क्लास में आने वाले हैं, राइट। अब आपका वह एक काम कौन सा है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, आप किस लिए आने वाले हैं? क्या आप सब होटल में रुकने के लिए आने वाले हैं? क्या आप केवल 15 मिनट अपने घर से अलग रह करके पिकनिक मनाने के लिए आने वाले हैं? क्या आप भोपाल नगरी का आनंद लेने के लिए आने वाले हैं? क्या आप सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं? क्या आप 15 दिन अपने घर से अलग हट करके कुछ खाने का आनंद लेने के लिए आने वाले हैं? क्या आप अपने घर से मुक्ति पाने के लिए आनंद आने वाले? मतलब एक लिस्ट बना लीजिए, एक लंबी लिस्ट। और आपको लगेगा कि नहीं, इनमें से कोई बात फिट नहीं बैठ रही, ये बावजूद इसके कि इनमें से सारी बातें थोड़ी थोड़ी होंगी। देखिए, जब आप लोग यहां आएंगे तो आप कहीं ना कहीं रुकेंगे ही, आप भोजन भी करेंगे, आप मुझसे भी मिलेंगे, आप भोपाल शहर को भी देखेंगे, आप अपने घर से दूर भी रहेंगे, अपने घर से अलग हट करके भोजन भी करेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। इनमें से मैंने अभी जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी चीजें होंगी, लेकिन आप इनके लिए नहीं आ रहे हैं। और इसको समझिए, इसको हर जगह लागू कीजिए, अद्भुत हो जाएगा, अद्भुत विलक्षण क्रांति हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। आप किस चीज के लिए आने वाले हैं, बहुत स्पष्ट रूप से आपका उत्तर होगा। इसमें कहीं कोई द्वंद नहीं है, कोई भ्रम नहीं है कि आप सांप को रस्सी समझ रहे हैं या रस्सी को सांप समझ रहे हैं। बहुत स्पष्ट है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें इसके लिए आने वाले हैं, राइट। तो मित्रों, जो अर्जुन द्वारा देखी गई चिड़िया के आंख की पुतली थी वो क्या थी? वो यही थी। तो अब आपको अपनी मानसिकता इस तरीके से बनानी है, अपने दिमाग को बार बार ये इंस्ट्रक्शन देना है कि मैं वहां यह जानने के लिए जा रहा हूं कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करनी है। दैट्स ऑल। दूसरी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इसका मतलब यह मत समझिएगा कि दूसरी चीजें नहीं होंगी, दूसरी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए जो मायने रखता है वो लर्निंग मायने रखती है। यहां मैं किसी भी तरह की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको आपकी परेशानी हो रही है तो उसको एडजस्ट कीजिए। कुल मिलाकर के मित्रों, ये कि जो मेरे दिमाग में एक सिंबल आता है अपने अनुभव के स्तर पर, जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये कि प्लीज बाराती की जो मानसिकता है उससे मुक्त होकर के आइए, बाराती बनकर मत आइए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं आप जानते होंगे। हो सकता है कि जो शहर में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं वो मेरी इस बात को सही तरीके से न समझ पाए, क्योंकि उनको पहले के बारात में जाने का मौका नहीं मिला होगा। मैंने ये देखा है कि जो बाराती आते थे और जब बाराती बनकर के लड़की वालों के यहां पहुंच जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि तैमूर लंग आ गए या नादिर शाह आ गए। आदेश पर आदेश, ये लाइए वो लाइए ये लाइए। घर में कुछ नहीं करते, घर में सब खुद ही करते हैं और अच्छी बात है, कम से कम घर में तो कर लेते हैं। यहां आने के बाद आदेश पर आदेश, जैसे कि पता नहीं क्या बनकर आ गए हैं, बाराती क्या बने हैं, विशेषाधिकार से युक्त, संविधान से ऊपर, एबव द लॉ नागरिक पहुंच गए हैं। नागरिकों का जमावड़ा आ गया है और लड़की वालों के बिचारों के नाक में दम कर देते हैं, दम कर देते थे। तो ठीक है, उनको तो कुछ पाना नहीं था, वो कुछ पाने के लिए नहीं आते हैं, है ना। क्या कहते हैं, दुल्हा को दुल्हन मिल जाती है और वो अपना लेकर के चला भी जाता है। वहां पाने की बात नहीं होती है, यहां आप पाने आ रहे हैं, पाएंगे आप अपने लिए और ठीक मित्रों इसी तरह से खोएंगे भी तो आप अपने लिए। मैं आपको ये जरूर इंश्योर करता हूं ऑन द पार्ट ऑफ द एकेडमी कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने देंगे। जितनी भी अच्छी से अच्छी आपको लर्निंग हम करा सकते हैं, लर्निंग की बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम आपकी लर्निंग कराएंगे। तो मित्रों, बट नेचुरल है कि चूंकि टू वे ट्रैफिक है, दोनों तरफ से है, आप लेने वाले हैं हम देने वाले हैं, और इन दोनों में जितना ज्यादा सामंजस्य स्थापित हो पाएगा रिजल्ट उतने ही बेहतर आएंगे। तो मित्रों, अपनी मानसिकता को आप और ज्यादा थोड़ा फोकस करें, और ज्यादा फोकस करें कि हम लर्निंग के लिए जा रहे हैं, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम सीखने और समझने के लिए जा रहे हैं और वो हम करके आएंगे, राइट। और ये मैं केवल यही की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, जहां भी, चाहे आप एक दिन के लिए भी कुछ कर रहे हो, एक घंटे के लिए भी कुछ कर रहे हो, यही भावना होनी चाहिए। और सच पूछे तो यही मेडिटेशन है, यही तो ध्यान है कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप फोकस्ड हैं कि एक चीज पर आपको ध्यान देना है, एक चीज पर आपको केंद्रित होना है। तो मित्रों, ये मुझे कुछ बातें आपसे करनी थी। अब मैं कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, आज शुक्रवार है और ऐसा हर शुक्रवार को मैं करता हूं। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन कल शनिवार को आपको जो न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं वो मिलेंगी, और साथ ही साथ शनिवार को ही आपको योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिका के टोटल चार आर्टिकल, दो हिंदी के दो इंग्लिश के, वो भी मिलेंगे। उसके साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन मिलेगा, साप्ताहिक प्रश्न जो मेंस के पैटर्न पर होता है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है, और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज पर, और आज की अच्छी न्यूज ये है कि एनालिसिस करने के लिए हम लोगों के पास आज कोई न्यूज नहीं है, कोई न्यूज नहीं है जिसको आधार बना करके मैं आपसे चर्चा कर सकूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आज हम चर्चा करेंगे ही नहीं। आज मैं चर्चा कर रहा हूं मित्रों, और इसे ही आप आज का मुख्य विषय माने, और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं मानसिक अवसाद पर, मानसिक अवसाद जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, राइट। अब आप कहेंगे कि सर ये तो लाइफ मैनेजमेंट का विषय है, इस विषय को आप डेली ऑडियो लेक्चर में क्यों ले रहे हैं। मित्रों, मैं पहले इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ये लाइफ मैनेजमेंट का विषय तो है ही, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट अब आपके सिविल सर्विस के फोर्थ पेपर का भी हिस्सा बन चुका है, मेंस के फोर्थ पेपर का हिस्सा, जिसमें आप इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो इसलिए इसे आप अपने सिलेबस का ही हिस्सा मानकर चलें। यह बात जरूर है कि फोर्थ पेपर का है। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि कल मैंने आपको हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान का एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, जो अवसाद को लेकर ही था और जिसमें दीपिका पादुकोण, खासकर सच पूछे तो दीपिका पादुकोण जो आज एक बहुत ही लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं भारत की और वास्तव में बहुत अच्छा रोल करती हैं, वो कभी मानसिक अवसाद से ग्रस्त थी और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि अपनी, क्योंकि लोग अपनी मानसिक अवसाद के बारे में बताना पसंद नहीं करते। भारतीय समाज में कुछ इस तरह की धारणा है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो इसका मतलब है कि वो पागल होने के करीब है, तो लोग उसको फिर अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। मतलब ये उनके, मैं कहूंगा कि एक मजबूत दिल का प्रमाण है, उनके साहस का प्रमाण है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं इससे ग्रसित थी। और उनका कहना इसलिए मायने रखता है क्योंकि फिर ये लगेगा लोगों को कि इससे तो कोई भी ग्रसित हो सकता है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ग्रसित हो जाना तो चली एक बात है लेकिन इससे उबरा भी जा सकता है, और उन्होंने उबर कर दिखाया और आज वो वेल नोन एक्ट्रेस है। केवल उबरा ही नहीं गया है, मतलब ये नहीं कि केवल वो उस अवसाद से मुक्त हो गई है, बल्कि उन्होंने उसे रचनात्मकता में कन्वर्ट भी कर दिया है और इसका प्रमाण हमारे सामने है। मित्रों, अब ये फोर्थ पेपर का कैसे पार्ट है इसे थोड़ा सा समझिए। देखिए, फोर्थ पेपर में एप्टीट्यूड की बात होती है, इंटेग्रिटी की बात होती है, ऑनेस्टी की बात होती है, सुख और आनंद की बात होती है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है, इन सब की बात होती है, राइट। ये सारी की सारी जो है एक मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं, है ना, मन की स्थितियां हैं, विचारों की स्थितियां, ठीक है, उसमें मनोविज्ञान सीधे सीधे साइकोलॉजी नहीं है, और अगर हम डिप्रेशन को लेंगे तो वो साइकोलॉजी का पार्ट होगा। लेकिन जब किसी भी मनोविज्ञान का प्रभाव सीधे सीधे व्यक्ति की कार्य क्षमता पर पड़ने लगे, समाज पर पड़ने लगे, तो बट नेचुरल है कि फिर वह हमारे चिंता का विषय बनता है, हमारे डिस्कशन का हिस्सा बनता है और उसमें हमारी प्रवृत्तियां शामिल हो जाती हैं, राइट। तो इसीलिए मित्रों मुझे लगता है कि यह उसका एक हिस्सा है आपके सिलेबस का, बावजूद इसके कि डिप्रेशन जैसा कोई अलग से शब्द आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ नहीं है। हो सकता है कि डिप्रेशन पर कोई क्वेश्चन न भी आए, एम्बिशन पर आ सकता है, महत्वाकांक्षा पर आ सकता है, युवाओं की मानसिक कमजोरी पर आ सकता है कि उनमें संघर्ष करने की क्षमता कम होती जा रही, क्या आप ये समझते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न बनाया जा सकता है और उसको डिप्रेशन से जोड़ा जा सकता है। तो मुझे लगा मित्रों कि चूंकि यह थोड़ा सा अलग तरीके का विषय है और एक मौका है जब हम थोड़े से अलग विषय पर बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं इस पर बात की जानी चाहिए, क्यों की ही जानी चाहिए, और मुझे ये जरूरी भी लगा, महत्वपूर्ण भी लगा। देखिए मित्रों, एक डेटा हमारे सामने है और हम दो चीजें देख रहे हैं अपनी। अब हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन के बाद 1990 के बाद, देखिए आप सब में से ज्यादातर लोग 1990 के बाद ही इस धरती पर आए हैं, हम लोग उनमें हैं जो 60 के आसपास आए, हम लोगों ने 60 से 90 का दौर भी देखा, वो क्या दौर था, और 90 से अब तक का भी हम दौर देख रहे हैं, तो हम बिल्कुल वो जो संधि रेखा होती है दो कालों का, जो मिलन स्थल होता है, उसको बहुत स्पष्ट से देख रहे हैं और बहुत स्पष्ट से उसे महसूस भी कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ महसूस कर रहे हैं, और सच पूछे तो बहुत तकलीफ भी होती है। तकलीफ इस मायने में होती है मित्रों कि जो 90 से पहले का जो दौर था, हम लोग भी एम्बिशस थे, तभी बहुत से लड़के जो एकदम गांव में रह रहे हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग के हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर पहुंचे हैं, आखिर कहीं ना कहीं तो एम्बिशन उनमें भी रहा होगा, राइट। लेकिन एक बात थी, वो जो एम्बिशन था वो कमजोर नहीं बनाता था, अगर वो एम्बिशन पूरा नहीं हो पाता था तो हमें जिंदगी बेकार नहीं लगने लगती थी, लगता था कि ठीक है जिंदगी में और बहुत कुछ है, हम कर लेंगे। तो वो एम्बिशन को प्राप्त न करना जीवन को खत्म कर देने का कारण नहीं बनता था, दुर्भाग्य से अब ऐसा हो गया है। लिबरलाइजेशन के बाद जो सबसे ज्यादा मानसिक दुष्प्रभाव जो युवाओं पर पड़ रहा है वह है एम्बिशन, न केवल इसीलिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, उन्हें लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसको भी पा सकते हैं, इसको भी पा सकते हैं, बल्कि दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, कार्य प्रणाली का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां, या भारत में जो कार्य करने की पद्धति विकसित हो रही है वो बहुत स्ट्रेस वाली हो रही है। मुझे सच पूछे तो सुनकर बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि जब मैं प्राइवेट कंपनीज में जो थोड़े से भी ठीक ठाक पद पर काम कर रहे हैं बात करता हूं, तो उनके पास अपनी जिंदगी के लिए कोई वक्त ही नहीं है, कोई वक्त नहीं है। रात दिन वो काम कर रहे हैं, और सच पूछे तो इसलिए भी वो ये काम कर रहे हैं कि उन्होंने एक सिद्धांत बना लिया है कि अभी तो एज है, जितना काम कर सकते हो काम करो और बाद में फिर आराम करेंगे, और वो बाद कभी भी नहीं आता है। तो जो कार्य प्रणाली हमारी हो रही है वो कार्य प्रणाली स्ट्रेस वाली होती जा रही है, एक बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। दूसरी चीज ये हो रहा है फ्रेंड्स कि आप मीडिया को देखिए, मीडिया लोगों की सफलताओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर हाईलाइट करता है बहुत, और जो उनकी सफलताओं के पीछे जो रियल कारण रहे हैं उनको नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि देखो कल तक यह था और आज यह हो गया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल वो रॉकेट में सवार होकर के एकदम अचानक ऊंचाई तक पहुंच गया, जबकि वो जिस ऊंचाई तक पहुंचा है उस ऊंचाई तक पहुंचने की एक प्रक्रिया रही है, वो स्टेज बाय स्टेज पहुंचा है, और उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ रहा है, बहुत सी शक्तियों ने उसकी मदद की है, हम वो नहीं देख पाते और हमें दिखाई देता है सिर्फ उसकी दिखाई देती है सिर्फ उसकी सफलता, हमें लगता है कि हम भी इसको पा सकते हैं, और जब हम उसे नहीं पा पाते तो लगता है कि हम किसी काम के नहीं है, यूं कह लीजिए कि अपने अस्तित्व का बोध जीरो हो जाता है, लगता है कि हम बहुत ही नकारा व्यक्ति हैं, हम किसी काम के नहीं हैं। और दुर्भाग्य ये हो रहा है कि 80 के आसपास या 75-80 के आसपास जिनका जन्म हुआ है, वो जो आपके पेरेंट्स हैं वो इस संकट को नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चों से कुछ इसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं कि ये कोई कमाल करेगा, ये कोई चमत्कार करेगा, और आप देखिए कि इसी कमाल में, इसी चमत्कार, इसी आपाधापी में पूरा का पूरा जो युवा वर्ग है, ज्यादातर बड़ा युवा वर्ग इसमें खप गया है, लग गया है। मित्रों, उसी का कारण आज भारत जैसे देश में यह हो रहा है कि भारत आज एक ऐसा देश बन गया है जहां की सबसे ज्यादा परसेंट युवा मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, सबसे ज्यादा युवा, जबकि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अवसाद वाला स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हमारे पास सोशल सपोर्ट बहुत ज्यादा है, ग्रस्तता नहीं होनी चाहिए। और उससे भी दुर्भाग्यजनक बात, कल के आपने उस क्लिपिंग्स में एक आंकड़ा देखा होगा कि 2015 में 52,000 युवाओं ने, जिनकी एज 14-29 के बीच में है, वो सुसाइड करते हैं, यानी कि हर घंटे एक युवा देश का आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही चौंकाने वाली बात है और बहुत ही चुनौती देने वाली बात है, और मुझे लगता है कि यहां यह कह रहा है कि समाज को सतर्क हो जाना चाहिए, अपने लिए वो कुछ नए नॉर्म्स बनाए, नए वैल्यू सिस्टम एस्टेब्लिश करे, नई कार्य प्रणालियां सामने लेकर के आए, क्योंकि जीवन एक बहुत ही अलग पैटर्न पर चलता है, जीवन को एम्बिशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो एम्बिशन हमारे अंदर जो पैदा करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी सोसाइटी है, जीवन नहीं। जीवन को तो केवल एक ही बात से मतलब होता है, और वो है कि उसके अस्तित्व की रक्षा होती रहे। मित्रों, मैंने कुछ सैद्धांतिक तौर पर आप लोगों से बातें की हैं, और इसी से रिलेटेड जो थोड़ा सा अलग तरह का एक विषय है, बिजनेस स्टैंडर्ड में जो एक लेख छपा है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसे भी देख लेंगे, लेकिन यह ऐसा विषय है जो आपके निबंध में भी काम आ सकता है। अगर किसी का सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और मेन्स का जो फोर्थ पेपर है आपका उसमें भी मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है। तो मित्रों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने अनुसार उसे देख लीजिएगा। मैं सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं चांद खान, भवेश गुप्ता, अवनीश प्रताप सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जसदेव सिंह भरतपुर राजस्थान, मस्तान सिंह, विवेक कुमार, रवि कुमार बड़ी बलिया बिहार से, और संजय गौतम हिमाचल प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कल शनिवार है, उसके बाद रविवार आएगा, इन दो दिनों के लिए मैं अब आप सबके सुखद होने की शुभकामनाओं के साथ विदाई चाहूंगा। नमस्कार।